नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बुधवार को विधानसभा में राज्य का 78,800 रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने G20 की तैयारियों के तहत 9 योजनाओं की भी घोषणा की। दिल्ली सरकार का 2022-23 के लिए बजट का आकार 75,800 करोड़ रुपए और इससे पहले के वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपए था। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, अगर बजट मनीष सिसोदिया पेश करते तो ज्यादा खुशी होती। वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ये बजट लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। गहलोत ने कहा, यह स्वच्छ, सुंदर, आधुनिक दिल्ली को समर्पित बजट है, जिसमें अगले 10 वर्ष के दौरान 1400 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क की मरम्मत पर 19,446 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 2034 करोड़ रुपए आवंटित किए। आम आदमी पार्टी की सरकार का ये लगातार 9वां बजट है। विश्व बैंक समूह की इकाई IFAC वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई इकाई में 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी। IFC महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्ण स्वामित्व वाली अंतिम छोर तक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी में 600 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इसे एक नई कंपनी के रूप में गठित किया जाएगा। मुंबई की कंपनी M&M ने बयान में कहा कि IFC देश में IFC का EVV निर्माता में यह पहला निवेश है। साथ ही ये इलेक्ट्रिक तीपहिया में उसका पहला निवेश होगा। IFC ये निवेश 6,020 करोड़ रुपए के मूल्यांकन पर अनिवार्य परिवर्तनीय माध्यमों के जरिए कर रही है। इस निवेश से नई कंपनी में IFC को 9.97% से 13.64% के बीच हिस्सेदारी मिलेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक एवं CEO अनीश शाह ने कहा, भारत के निर्धारित जलवायु लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करना जरूरी है। IFC हमारे लिए स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ एक आदर्श भागीदार है। साख निर्धारित करने वाली एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि वह अडानी समूह की संचालन व्यवस्था और वित्त पोषण के बारे में अतिरिक्त सूचना का इंतजार कर रही है। कंपनी ने संकट में फंसे समूह की दो कंपनियों के रेटिंग परिदृश्य को संशोधित करने के कुछ सप्ताह बाद ये बात कही है। S&P ने कहा कि उसे जनवरी के अंत में प्रकाशित अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में समूह के खिलाफ आरोपों का कर्ज पर पड़े प्रभाव और हाल ही में उच्चतम न्यायालय की तरफ से जांच के निष्कर्षों का इंतजार है। रेटिंग एजेंसी ने बार बार पूछे जाने वाले सवालों की तरह अडानी समूह ज्ञात अज्ञात शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के साख विश्लेषक अभिषेक डांगरा ने कहा, बाजार की अन्य इकाइयों की तरह हम रेटिंग तय करने से पहले अडानी समूह के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा मानना है कि अगले 12 से 24 महीनों में संचालन व्यवस्था और वित्त पोषण जोखिम के बारे में अधिक जानकारी से रेटिंग को दिशा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि एजेंसी ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद पिछले महीने अडानी पोर्ट्स और अडानी इलेक्ट्रिसिटी के परिदृश्य को स्थिर से नकारात्मक कर दिया था। अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के प्रमुख अरुण बंसल ने बुधवार को कहा कि आने वाले वर्षों में हवाई अड्डों के परिचालन लागत में 30-50% की कमी लाने की जरूरत है। उन्होंने भारतीय विमानन कारोबार के तेजी से विस्तार की संभावना जताते हुए ये बात कही। वर्तमान में कंपनी 7 हवाई अड्डों का परिचालन करती है और एक अन्य का निर्माण कर रही है। बंसल ने कहा कि वह और अधिक हवाई अड्डों का संचालन करके दुनिया में अग्रणी हवाई अड्डा परिचालक बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी एयरपोर्ट्स भौतिक और डिजिटल श्रेणी में निवेश कर रही है और क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। बंसल ने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र को पिछले 20-30 साल तक काफी हल्के में लिया गया। आने वाले वर्षों में हवाई अड्डों के परिचालन लागत में 30-50% की कमी आने की संभावना है। भारत में हवाई अड्डों के परिचालकों का राजस्व अगले वित्त वर्ष में 26% बढ़कर $3.9 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। विमानन क्षेत्र की परामर्शदाता कंपनी कापा इंडिया ने बुधवार को ये जानकारी दी। हवाई अड्डों के लिए परिदृश्य पेश करते हुए कापा इंडिया ने कहा कि 2023-24 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में हवाई यात्री यातायात 39.5 करोड़ होने का अनुमान है। इसमें से घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 27.5 करोड़ से बढ़कर इस वित्त वर्ष में 32 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या 5.8 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। कापा इंडिया ने कहा, ऐसा अनुमान है कि 2029-30 तक भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 70 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या 16 करोड़ पर पहुंच सकती है। ब्रिटेन में 4 महीने में पहली बार फरवरी में मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। खाने पीने का सामान और ऊर्जा के दाम बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक फरवरी में बढ़कर 10.4% पर पहुंच गया, जो इससे पिछले महीने 10.1% था। ताज़ा आंकड़ों से विश्लेषक हैरान हैं। उन्होंने अनुमान जताया कि मुद्रास्फीति घटकर 9.9% पर आ जाएगी। मुद्रास्फीति बढ़ने से बैंक ऑफ इंग्लैंड पर भी ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ गया। बैंक बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में इस बारे में कोई फैसला ले सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।